अभी चर्चा हो रही थी कि आज चर्चा का विषय क्या रहेगा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि राधा जी के बारे में अभी कंटिन्यू किया जाएगा, पर आज जो है हम राधा जी के बारे में और चर्चा न करके कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जिसका ज्ञान सब लोगों को होना चाहिए, जिनको है वो रिवाइज करें, जिनको नहीं है वो इस ज्ञान को प्राप्त करें। इसका मैं समझता हूं कि उनको लाभ मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी चातुर्मास्य के बारे में। कितने लोग जानते हैं चातुर्मास्य के बारे में अच्छे तरीके से? नंबर एक। उसके बाद शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास का महत्व क्या है। तो कितने लोग कार्तिक मास का महत्व जानते हैं? तो पूछना पड़ेगा मेरे को, बताएं जी माता जी कार्तिक मास का महत्व। हाँ कार्तिक मास में दीपक जलाते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपने एक लाइन में सारी बात खत्म कर दी। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए थोड़ी सी चर्चा पांच मिनट के लिए हम लोग, ज्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे क्योंकि कार्तिक मास का महत्व जो है उसमें बहुत लंबा समय लगेगा और 8:15 हो गए हैं। चातुर्मास से आरंभ होता है कब से? व्हाट इज द बिगिनिंग? जिस दिन, इसको दो तरीके से लिया जाता है। कुछ लोग लेते हैं इसको आषाढ़ महीने के अंदर एकादशी से और कुछ लोग लेते हैं इसको आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से। आषाढ़ महीने की जो एकादशी होती है उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। क्या नाम है उसका? देवोशयन एकादशी, अर्थात उस दिन जो है भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। कितने लोगों ने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए हैं? अभी तो पिक्चर चल रही थी, तो बद्रीनाथ जी का जो दर्शन है उसमें क्या है, भगवान योग निद्रा में है। वहां पे जो है भगवान योग निद्रा में है। और ये जो मंथ है जो ये इसकी समाप्ति होती है चातुर्मास्य की, ये कब होती है? अभी जो कार्तिक मास के अंदर जो है, जो शुक्ल पक्ष के अंदर एकादशी आएगी उस दिन समाप्ति होती है और वैष्णव जन जो है इसको पूर्णिमा से आरंभ करते हैं और पूर्णिमा पे ही समाप्त करते हैं। चातुर्मास्य के अंदर अगर हम इसको सौर महीने से लें अर्थात सूर्य के हिसाब से लें तो ये चलता है जुलाई से लेके और अक्टूबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, अर्थात श्रावण से लेके और कार्तिक तक। हर एक व्यक्ति को जो है चातुर्मास्य के अंदर ऑस्टेरिटीज करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी करी हुई तपस्या आपको सीधे धाम ले जाती है, आपको कहीं रास्ते में रुकावट नहीं होती। चातुर्मास्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो सन्यासी लोग हैं, सन्यासी जो हैं वो ज्यादा फिर ट्रेवल नहीं करते हैं, सबके सब जो है एक स्थान पर अर्थात अपने अपना स्थान जहां जिसने नियत किया हुआ है वहां पर जो है शेल्टर लेते हैं, वहां पर जो है अपना चातुर्मास्य के अंदर वहीं पर अपनी ऑस्टेरिटीज, वहीं अपनी तपस्या, वहीं अपने व्रत का पालन करते हैं। शास्त्र कहता है कि अगर आप चातुर्मास्य व्रत का पालन नहीं करते हो तो आपके नरक जाने की टिकट पक्की है, उससे फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका नरक जाना निश्चित। जब सन्यासी लोग जो हैं एक जगह पर अपने आप को 4 महीने के लिए स्थापित कर लेते हैं तो उन दिनों में जो है उसका लाभ क्या होता है, उसका एडवांटेज कौन लेता है और उसका लाभ किसे प्राप्त होता है? तो कृष्णा बुक के अंदर चैप्टर 85 में प्रभुपाद जी लिखते हैं स्पष्ट, जब सुभद्रा की किडनैपिंग की चर्चा चल रही है, कि जब सन्यासी एक जगह पर अपने आप को विराजमान कर लेता है तो जो लोकल लोग हैं वहां के उनको सन्यासियों का संग करने का लाभ प्राप्त होता है। इट इज अ वेरी बिग थिंग। आप अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने भी चातुर्मास्य व्रत का पालन किया था। किसके यहां रहे थे वो? एनीबडी? वेंकटेश भट्ट के यहां दक्षिण भारत में। रामचंद्र जी जब वनवास के समय में थे तब उन्होंने भी चातुर्मास्य व्रत का पालन किया था। तब कहां रहे थे? हम्पी के निकट मलयवंत पर्वत पे, दिस इज इन कर्नाटका, जहां पे आप जब जाते हैं हाउसपैड हम्पी विजयनगरम इस एरिया में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं वहां पे एक मलयवंत पर्वत है, बड़ा सुंदर पर्वत है। उसके अंदर जो है एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है राम सीता लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का। वहां जो है चातुर्मास्य व्रत का पालन किया। चातुर्मास्य व्रत ऐसा नया नहीं है, इट इज नॉट न्यू कि आज शुरू हुआ है या इस कौन ने शुरू कर दिया है, इसके पहले नहीं था, शास्त्रों में वर्णित है और इसका पालन करना अति आवश्यक है। अब आती है बात कि चातुर्मास्य व्रत के अंदर आपको जो चार नियम हैं चार महीने के लिए वो क्या है, कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप इस समय के अंदर भगवान विष्णु के मंदिर की चार बार परिक्रमा करते हो तो ये आपको डेली रोज, इसका मतलब है आपने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। दिस इज वेरी एडवांटेजियस। उसने जो है सारे के सारे जो है तीर्थ स्थलों का दर्शन कर लिया है जहां पर कि गंगा जी का पानी बह रहा है, और उसने रेगुलेटिव प्रिंसिपल जब चातुर्मास्य के अंदर फॉलो किए हैं तो वो डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जाता है, कभी उसका फिर फॉल डाउन नहीं होता। अब आती है बात कि जो पहला महीना है इसका, जिसको श्रावण का महीना कहा जाता है, द फर्स्ट मंथ ऑफ चतुर्मास्य, उसके अंदर जो है क्या चीज मना है, कौन कौन से पत्ते हैं इसके अंदर? मेथी, पालक और धनिया। अच्छा, और क्या? मैं आपको प्रभुपाद जी के शब्द पढ़ के सुनाता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे उन्होंने लिखा है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल। वन शुड नॉट ईट स्पिनच, पालक नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद इट इंक्लूड्स अवॉइडेंस ऑफ लेट्यूस बट नॉट ऑफ कैबेज, लोग बंद गोभी बंद कर देते हैं, बंद गोभी की मनाही नहीं है। दिस डज नॉट इंक्लूड ग्रीन लीव सच एज कोरिएंडर, करी और नीम लीव यूज इन सीजनिंग। तो धनिया का जो आप नाम ले रहे हो प्रभुपाद के वर्ड्स हैं ये, ये किसी ने कॉन्कॉक्ट नहीं किया हुआ, उसमें लिखा है सीजनिंग आप कर सकते हो जिसमें धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग नीम के सूखे हुए पत्ते, सूखी नीम के फूल, सूखे नीम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर सकते हो, करी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये हरा पत्ता है परंतु उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा महीना आता है भाद्रपद का, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? भाद्रपद में दही नहीं लेना है। दही का मतलब क्या है, क्या क्या आता है दही में? दूध जमा हुआ और छाछ, ये तीन चीजें हैं जिसमें कि रायता आता है, छाछ आती है और मतलब सावर मिल्क प्रोडक्ट्स। परंतु इसमें लिखा है बड़ा स्पष्ट कि जब आप केक कुक करते हो तो उसमें जो रायता दही डाला जाता है उसको तैयार करने के लिए, उसकी मनाही नहीं है, उसको लिया जा सकता। उसके बाद है महीना अश्विन का, अश्विन के महीने में क्या रिकमेंडेशन है? दूध जो चल रहा है अभी, दूध ही चल रहा है ना, दूध की फास्टिंग चल रही है, दूध में क्या क्या रिकमेंडेशन है? एग्जैक्ट शब्द पढ़ के सुनाता हूं, आपका भ्रम मिट जाएगा। वन शुड नॉट ड्रिंक मिल्क, मिल्क फास्ट मीन्स रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क स्वीट्स मिल्क बाई प्रोडक्ट्स आर ओके। मिठाई खा सकते हैं दूध की बनी, छैना ले सकते हैं, इसकी मनाही नहीं है, खीर ले सकते हैं क्योंकि मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क स्वीट्स हैं वो। परंतु बाद में लिखते हैं द रिस्ट्रिक्शन ऑन मिल्क इंक्लूड्स ऑल मिल्की फूड स्टफ्स जैसे राइस कुक्ड इन मिल्क, खीर मना है, खीर की मनाही है, खीर नहीं ले सकते। कार्तिक महीना जो आने वाला है जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसके अंदर क्या मना है? उड़द की दाल। शास्त्र कहता है इसके अंदर कि आपको ऐसे फल नहीं लेने चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स हों। कौन सा फल है इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं? शरीफा, शरीफा है, शरीफे में बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब चर्चा आई कार्तिक के महीने की, तो कार्तिक के महीने में क्या इंपॉर्टेंस है कार्तिक की, इसकी चर्चा करेंगे शॉर्ट में। इसको शास्त्रों के अंदर 12 महीनों में सबसे पवित्र माना गया है, मोस्ट प्योर। कार्तिक के महीने के जो आखिरी 5 दिन है, एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक के, उसको बुलाया जाता है भीष्म पंचक के नाम से या विष्णु पंचक के नाम से। भीष्म पंचक की इंपॉर्टेंस क्या है और कार्तिक महीने में ओवरऑल इसको क्यों इतना ऑस्पिशियस माना जाता है, अब इसकी चर्चा करेंगे। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, वो नाम क्या है, दामोदर मास। इट इज दामोदर मास। क्यों कहते हैं दामोदर मास, इसलिए कहते हैं कि इस महीने के अंदर भगवान ने दामोदर लीला करी थी। कार्तिक का महीना ऑस्पिशियस इसलिए है कि इसके अंदर भगवान कृष्ण ने बहुत मुख्य मुख्य लीलाएं करी, अलग अलग सालों में, मतलब वर्ष अलग अलग रहे हैं पर मंथ हमेशा कार्तिक रहा है। गोवर्धन पूजा कब होती है, शंखासुर का वध कार्तिक में हुआ, अरिष्टासुर का वध कार्तिक में हुआ, राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य कार्तिक में हुआ, केशीसुर का वध कार्तिक में, व्योमासुर का वध कार्तिक में, अखरूर जी का व्रज आगमन कार्तिक में, अकृष्ट बलराम का मथुरा गमन कार्तिक में, कंस का वध कार्तिक में, दामोदर लीला कार्तिक में, दीपावली कार्तिक में, नारद जी को वर दिया भगवान ने कि कथा सुनने वालों को इस माह में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी अनायासी, वो भी कार्तिक में हुआ। गोपाष्टमी शुक्ल पक्ष में होती है, कार्तिक में होती है, और भीष्म पंचक जो है कार्तिक में। दिवाली 5 दिन की होती है, कितने लोग 5 दिनों के बारे में जानते हैं, वो भी कार्तिक में। तो आज जो है हम इनमें मुख्य मुख्य बातों की बड़ी शॉर्ट में चर्चा करेंगे। कुबेर का एक विश्वास पात्र आता है और कृष्ण बलराम के साथ उनके व्यूह में मिल जाता है, जब कृष्ण बलराम और उनके साथ गोपियां जो हैं वो घूम रहे हैं वनों के अंदर विहार कर रहे हैं। उसका नाम है शंखासुर। उसके माथे के ऊपर शंख के आकार की मणि है। वो कहता है कि मैं बड़ी ऑपुलेंट फैमिली से आया हूं, बड़े ऐश्वर्यमय परिवार से आया हूं, कुबेर का मैं विश्वासपात पार्षद हूं, तो ये जो है दोनों गोप बालक काहे गोपियों के साथ जो है खेल रहे हैं, गोपियों के साथ तो मुझे रास रचाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। तो सारी गोपियों को उठा के एक तरफ को वो ले जाता। जब कृष्ण बलराम देखते हैं तो उसके पीछे जाते हैं और उसको पकड़ के झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो शंखासुर का वध कर दिया जाता है और उस वध के बाद भगवान जो है उसके माथे से वो मणि निकाल लेते हैं। बड़ी सुंदर मणि है, किसको दी जाए, समस्या बड़ी भारी है। राधा जी को देते हैं तो बाकी गोपियां नाराज होती हैं, बोले ये स्पेशल है कोई, हम नहीं आपके साथ खेल रही थी, हम आपका संग नहीं कर रही थी, हम आपको संग नहीं दे रही थी, राधे राधे करते रहते हो, राधा को देते हो, हमको नहीं देते हो। तो भगवान ने जो है लीला रची कि उन्होंने जो वो मनी है वो बलराम जी को दे दी, झगड़ा ही खत्म, ना तुम्हें मिले ना तुम्हें मिले, बलराम जी को मनी दे दी। बलराम जी कहते हैं मनी मेरे किस काम की है, मैं क्या करूंगा इसका, चलो ऐसा है मैं कृष्ण के मित्र मधुमंगल को दे देता हूं। उन्होंने मनी जो है मधुमंगल को दे दिया। मेरे को दे दिया है, मेरे किस काम का है, तो बड़ी सुंदर लगेगी राधा जी के पास, मैं क्या करूंगा। उन्होंने उठाया मनी और राधा जी को पहुंचा दिया। जो मनी भगवान कृष्ण को राधा जी को देनी थी वो उनके पास डायरेक्टली न देके उन्होंने एक एक घुमावदार तरीके से वो मणि को राधा जी के पास पहुंचा दिया गया। ये जो लीला है ये कार्तिक मास में ही हुई है। अब आती है बात, इसके बाद अरिष्टासुर का वध होता है। अरिष्टासुर ने एक बैल का रूप धारण किया है, राक्षस है, कंस का बड़ा प्रिय है, एक बैल का रूप धारण करके जो है बछड़ों के साथ मिलके, गौओं के साथ मिलके उस झुंड में चला जाता है और वहां जाके जो है वो भगवान कृष्ण का वध करना चाहता। भगवान उसको पहचान जाते हैं। कथा बहुत लंबी है, कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो सारे डिटेल्स मिलेंगे, अभी समय नहीं है इसलिए उसको दो दो लाइनों में मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं। तो भगवान जो है उसको, जब वो फुफकारता हुआ भगवान की ओर आता है तो भगवान उसको जो है सींगों से पकड़कर हवा में घुमाते हैं, चार पांच बार छह बार घुमा के पटकनी देते हैं और वो अपने प्राण छोड़ देता। अरिष्टासुर का वध हो गया। राधा जी नाराज। राधा जी कहती हैं कि तुमने एक गो हत्या का कार्य किया है, मेल काऊ, तो मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगी। और गोपियों से कहती है कोई भी अब कृष्ण का संग नहीं करेगा। कृष्ण बड़ी मान मनोबल करते हैं कि आप जो है किसी भी तरीके से जो है अब मेरे साथ संग करिएगा, परंतु राधा जी कहती हैं सॉरी, पहले शुद्ध और पवित्र हो जाओ। जब तक तुम शुद्ध और पवित्र नहीं होगे तब तक तुम्हारे साथ मेरा संग नहीं हो सकता। और शुद्ध पवित्र होने का एक ही तरीका है, पर वो तरीका है कि समस्त ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान करके आओ। अब कृष्ण कहते हैं कि मैं यहां से जाऊंगा समस्त ब्रह्मांडों में, वहां जाके जो है स्नान करूंगा। मैं ऐसा करता हूं सारे तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। तो भगवान ने जो है अपनी दाएं पेड़ी को जमीन के अंदर दबाया तो बहुत बड़े कुंड की रचना हो गई। सारे तीर्थों का आवाहन किया, सारे तीर्थ वहां पर जो है सोने के कलश लेके साकार रूप धारण करके अपना अपना जल लेके उपस्थित हो गए। भगवान कृष्ण की स्तुति करी और उनके कहने पे जल जो है उन्होंने उस कुंड के अंदर डाल दिया और वो कुंड कहलाया श्याम कुंड। भगवान ने श्याम कुंड में स्नान कर लिया। अब स्नान करने के बाद राजा जी से कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैं तो शुद्ध और पवित्र हो चुका हूं और अब तुम अपवित्र हो। राधा जी कहती है मैंने क्या किया है? बोली तुमने जो है एक राक्षस की साइड ली है, यू हैव साइडेड विद असुर, तुमने राक्षस की तरफदारी की है, तुमने राक्षस की साइड ली है, इसलिए अब मैं तुम्हारा संग नहीं करूंगा। बोली मेरे संग करने का क्या तरीका है? बोले तुम्हारा संग का तरीका यह है कि तुम भी जाके ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान करके आओ। अब रिवर्स बाल उनके पाले में फेंक दी। अब राधा जी कहती मैं तो फंस गई, वही मैं क्या करूं। अच्छा कोई बात नहीं, अपना मान, ट्रांसेंडेंटल मान दिखाती है, अपना दिव्य मान। क्या कहती है? कोई बात नहीं, मैं यहीं पर एक और कुंड की रचना करूंगी। उन्होंने अपना जो है कंगन तोड़ा और कंगन तोड़ने के बाद जो है उससे उन्होंने खुदाई चालू कर दी और खुदाई चालू करके वहां पे एक छोटे से कुंड की रचना हो गई, जिसको बाद में विशाल कुंड में परिवर्तित कर दिया गया। वो छोटे कुंड का नाम क्या था? कंगना कुंड। आपने देखा नहीं, जब राधा कुंड की सफाई हुई थी तो मैं फोटो देखी हूं किसी ने, तो राधा कुंड के बीचों बीच एक छोटा सा कुंड है, इसको कंगना कुंड के नाम से पुकारा जाता है। और उससे जब पानी निकलता है तो पूरे बड़े कुंड में फैल जाता है, जिसको राधा कुंड के नाम से पुकारा जाता है। अब जब कुंड की रचना हो गई है तो कृष्ण कहते हैं पानी कहां से लाओगी? मैंने तो आवाहन किया और सारे के सारे तीर्थ आ गए, तुम पानी कहां से लाओगे? तो राधा जी ने अपनी सखियों से बोला ऐसा करो, सब सोने के कलश लो, लाइन लगा के खड़ी हो जाओ, मानसी गंगा से हम पानी ले आएंगे। तो मानसी गंगा से पानी लाने की प्लानिंग हो गई और सब गोपियां, सब सखियां उनकी जो हैं लाइन में लग गई। तो सारे के सारे तीर्थ जो हैं उपस्थित हो गए और तो कहते हैं कि आपका तो कृष्ण से झगड़ा है, हमारे से तो नहीं है ना, हमें क्यों सजा दे रही हो? वाई पनिशिंग अस? हमें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए, हमारा क्या कसूर है? तो राधा जी पिघल जाती हैं। राधा जी कहती हैं, ठीक बात कहते हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम ऐसा करो कि अपना जल डाल दीजिए। तो इतना कहते ही जो है भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने जो श्याम कुंड है उसके आगे का रास्ता खोल देते हैं और सारा श्याम कुंड का पानी राधा कुंड में भर जाता है। अब राधा जी को उसमें स्नान करना, आओ ना देखा ताओ कृष्ण जो है छलांग मारते हैं और राधा कुंड में स्नान कर लेते हैं। तो तुम बाद में करोगी, मैं पहले कर रहा हूं। स्नान हो जाता है, उसके बाद जो है राधा जी मान जाती हैं। तो भगवान कहते हैं जो भी राधा कुंड के अंदर आके स्नान करेगा, राधा कुंड की पूजा अर्चना करेगा, उसको मेरा साक्षात प्रेम प्राप्त होगा और मेरे धाम वापस आने का रास्ता पक्का हो जाएगा। एक ही ऐसा तीर्थ स्थल है पूरे संसार के अंदर जहां स्नान रात को 12:45 बजे होता, क्योंकि राधा कुंड का प्राकट्य 11:45 पे हुआ था रात्रि में। दिन कौन सा था? बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी कब आती है, कब का दिन होता है वो? दिवाली से पहले आती है कि दिवाली के बाद आती है? तो दिवाली के पहले आती है तो कौन से दिन होते हैं? वही अष्टमी जिसको बोलते हैं वो कृष्ण पक्ष होता, परंतु जब हम लेते हैं चर्चा शुक्ल पक्ष की तो उन दिनों में अष्टमी में कौन सा सेलिब्रेशन है? उन दिनों सेलिब्रेशन है गोपाष्टमी का। गोपाष्टमी का महत्व तो क्या है कि गोपाष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण को गैया चराने की परमिशन ग्रांट की गई थी, अब तुम बड़े हो गए हो, बछड़ों के साथ साथ अब गऊ भी चारण कर सकते हो। तो कहां सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, कौन जगह सेलिब्रेट किया जाता है, कौन जगह सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, कौन सा वो स्पॉट है जहां पर ये कार्य किया गया था, जहां फेस्टिवल अरेंज होता है? पिछले साल कौन कौन गया था कार्तिक यात्रा में, तो आपको मालूम होना चाहिए। जो लोग कार्तिक यात्रा में गए थे उनको इस बार कौन कौन जा रहा है कार्तिक यात्रा में? अभी भी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ढीला है बिल्कुल। नहीं, इस साल अभी तो मैं देख रहा हूं लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, बड़े शर्मा रहे हैं हाथ खड़ा करने में, कहीं ऐसा देख ना ले हमें वहां कोई जाते हुए। तेर कदम पर गए थे पिछले साल, बाईस 21-22 होगी प्रभु जी, 22-23। अरे प्रभु जी जो है बड़े कंसिडरेट हैं, समझते हैं बात को कि क्या प्रॉब्लम्स है, इसलिए उसके हिसाब से प्लानिंग चेंज कर दिया उन्होंने, वेरी काइंड। बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल जो यात्रा गई थी टेर कदम का जो स्थान है जो नंदग्राम के सामने है वहां गोचारण लीला हुई थी, वहां पे गोपाष्टमी होती है। कभी आप जाए दोबारा कभी तो दर्शन जरूर करिएगा। अक्रूर जी का व्रज में आगमन होता है, अक्रूर जी जो है कृष्ण बलराम को मथुरा जी में ले जाते हैं, मथुरा जी में कंस का वध होता है, सारी कथाएं आपने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। अब आती है चर्चा इसके बाद कि दामोदर लीला क्या है। उसके पहले मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए चर्चा करूंगा कि राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य जो यहां हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं वृंदावन के अंदर, इसका प्राकट्य जो है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो गोलोक वृंदावन है वहां किस प्रकार हुआ है, कोई जानता है इस कथा को? Somebody knows? राधा और कृष्ण दोनों एक साथ एक दिन रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वन विहार कर रहे हैं वन के अंदर। खूब बढ़िया एटमॉस्फियर है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मन मन विहार बह रही है, फूलों की खुशबू पास से निकल रही है और बहुत झरने आवाज कलकल करके निकलते जा रहे हैं। वहां पर जो है कृष्ण के मन में इतना ज्यादा प्रेम जागृत होता है, इतना प्रेम जागृत होता है कि वो जो है राधा जी का फॉर्म ले लेते हैं, वो राधा जी की फॉर्म में आ जाते हैं और राधा जी पास बैठी हैं उनकी तरफ न देख के, क्योंकि राधा बन गई हैं तो अब कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, दो राधा हो गई नहीं, एक राधा बैठी है और एक खुद राधा हो गए, तो कृष्ण तो दिख नहीं रहे, तो कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए वन में भाग जाते हैं। अब उनके जो है मन से आवाज निकल रही है कृष्णा 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 पुकार रहे हैं और वन के अंदर प्रवेश करके भाग रहे हैं, वन के अंदर किसको ढूंढ रहे हैं? अपने स्वयं कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण राधा बने हुए हैं और कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। बड़ी अजीब लीला है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। अब जब राधा जी देखती हैं कि कृष्ण जो है डिसअपियर हो गए हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, और उन्होंने जो है उनकी सखियां बताती हैं कि वो तो आपका फॉर्म लेके आपको ढूंढते फिर रहे हैं, तो राधा जी के मन में भी अतीव प्रेम जागृत होता है और उस प्रेम के नाते वो जो है कृष्ण का रूप ले लेती हैं और राधा राधा कहके राधा जी को ढूंढना शुरू कर देती है। राधा जी स्वयं कृष्ण बन जा और कृष्ण बन के राधा जी को ढूंढना शुरू कर देती है। अब कृष्ण राधा बने हुए कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, राधा जी कृष्ण बनी हुई राधा जी को ढूंढ रही, लीला चल रही एक दूसरे को। तो किसी ने जो है जाके कृष्ण से कहा कि राधा जी की हालत बड़ी खराब है। कृष्ण कह रहे हैं मेरी उससे ज्यादा खराब है, आंसू मेरे बहे जा रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है मेरा, तुम राधा जी की बात बता रही हो, पर फिर भी चलो बताओ डिटेल्स बताओ क्या है। तो कह रही राधा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, बार बार बेहोशी हो रही है, बार बार मूर्छा आ रही है, हर वक्त उनके मुख से जो है राधा 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 निकल रहा है, तो कृष्ण बनी हुई है। अच्छा चलो मैं जाके उसको समझाता हूं, कुछ करता हूं। तभी जो है आकाशवाणी होती है, कहते हैं कि आप नवाक्षर मंत्र का जप करेंगे तो राधा जी जो है उनको बात सब समझ में आ जाएगी, वापस अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो कृष्ण राधा बने हुए हैं वो वहां जाते हैं, नवाक्षर मंत्र का जप करते हैं, जब फॉर्म उसको चैंटिंग करते हैं, तो राधा जी जो है जिन्होंने कृष्ण का रूप ले लिया हुआ है वापस राधा जी के रूप में आ जाती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब दोनों राधा खड़ी, एक राधा जो वापस राधा बन गई है, दूसरी जो कृष्ण राधा बने हुए हैं। राधा जी की आंखें नीची हैं, आंखें झुकी हुई हैं उनकी तरफ और पैर के अंगूठे से जो है कुरेद रही हैं धरती को। तो जो दोनों की आंखों में जो विरह के आंसू आए थे, एक दूसरे को ढूंढते हुए जो विछोह हुआ था, एक दूसरे को ढूंढते हुए जो विरह वेदना थी, उससे जो आंसू आए थे उससे दो कुंडों की रचना हुई। एक श्याम कुंड हुआ जो कृष्ण के आंसुओं से बना, एक राधा कुंड हुआ जो राधा जी के आंसुओं से बना। उन्हीं दो कुंडों का प्रतिबिंब यहां पर धरती पर क्रिएट हुआ। अब आती है चर्चा दामोदर लीला की। कितने लोग जानते हैं दामोदर लीला के बारे में? बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी ने, बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन, बहुत बढ़िया उसके पर्पट्स लिखे हैं। दामोदर का अर्थ क्या है? दाम कहते हैं रज्जू, रज्जू मींस रस्सी, उदर कहते हैं पेट, रस्सी से भगवान को पेट पर बांधा जा रहा है, ये दामोदर लीला है। यशोदा जी बैठी हुई हैं, दही बिलो रही हैं, कृष्णा आते हैं छोटे से कान्हा पास बैठते हैं, मां से दूध पीने की गुहार करते हैं, मां जो है उनको अपनी छाती से लगाती है, अपना स्तन उनके मुख में दे देती है। थोड़ा समय बीतता है तो मां देखती है कि साइड में दूध उफन रहा है, तो कृष्ण को परे करके दूध को बचाने चली जाती है। तो कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं, मैं प्यारा हूं या दूध प्यारा है, मैं प्यारा हूं या दूध प्यारा है। मटकी फोड़ते हैं, मक्खन निकालते हैं, कोने में बैठ जाते हैं, खुद भी खाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं। माता लौट के देखती है दूध को बचाने के बाद कि कृष्ण की आंखें लाल हुई पड़ी हैं, होंठ उनके एकदम लाल गुलाबी, चेहरे पे क्रोध, और माता कहती है इसने जो है आज मटकी फोड़ी है, मक्खन चुराया है, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वरना ये तो बहुत उफान करेगा, बहुत तकलीफ देगा। तो माता क्या करती हैं, छड़ी लेके आ जाती है, छड़ी से छड़ी दिखाती हैं, तो फिर सोचती हैं ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा एक्सेस हो जाएगी, छड़ी दिखाना छड़ी से मारना ठीक नहीं है, ऐसा करता हूं इनको रस्सी से बांध देती हूं उखल से, ये वहां बंधे रहेंगे तब तक मैं अपना कार्य कर लूंगी, तब तक मेरा कार्य हो जाएगा। अब वो जो है भगवान को रस्सी से बांधने के लिए रस्सी लेके आती है, और रस्सी से जब पेट को बांधा जा रहा है तो रस्सी दो उंगुल छोटी पड़ जाती है। भगवान ने साइज नहीं बढ़ाया, याद रखिएगा। लंका लीला के अंदर हनुमान जी जब गए थे तो साइज बढ़ा लिया था, लंका जाने के लिए, जबकि सुरसा के मुंह में जाने के लिए साइज छोटा कर लिया था। सिद्धियां थी, यहां भगवान ने कुछ नहीं किया, साइज वही है भगवान का। भगवान की लीला यही है कि भगवान जो है अपने आप को छोटे से छोटा, छोटे से बड़ा, उसी साइज में रहते हुए प्रमाणित कर सकते हैं कि यस, मैं स्वयं भगवान हूं और मेरी जो लीला है उसको कोई समझ नहीं सकता। यशोदा मैया कहती है अच्छा कोई बात नहीं, उठती हैं, भागती जाती हैं, एक और रस्सी लेके आती हैं, फिर उनको बांध देती है। देखती हैं उंगली दो वहीं की वहीं खड़ी हैं, दो उंगल रस्सी छोटी हो गई। वो रस्सियां लाती रहती हैं, उनको बांधती रहती हैं, लाती रहती हैं, बांधती रहती हैं। पता लगा है कि भगवान कृष्ण अभी तक बंधे नहीं, सैकड़ों रस्सियां इस्तेमाल हो गई। अल्टीमेटली थक हार के समर्पण कर देती हैं, अल्लाह अब और नहीं होता, अब बंध जा, अब मेरे से और रस्सी नहीं लाई जाती, अब मैं थक गई हूं, हाफ के बैठ जाती हैं। भगवान कहते हैं मैया थक गई है, इसे अब होगा नहीं काम, अब मैं बंध ही जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे अगली लीला भी करनी है, ये लीला हो गई है, अगली लीला मेरी वेट कर रही है। तो भगवान जो है मां के प्रेम के प्रति अपना सरेंडर कर देते हैं। देखिए आप, ये प्रेम की लीला है। पहले यशोदा जी ने क्रोध दिखाया है, फिर यशोदा जी ने प्रेम भाव दिखाया है, समर्पण का भाव दिखाया है कि मैं भगवान के प्रति समर्पण कैसे कर रही हूं कि अब मुझसे और नहीं होता, अब तुम मुझे जो है मुझसे बंध जाओ बस। तो भगवान ने जो है माता के प्रति समर्पण कर दिया, कहने लगे अच्छा मैया मैं बंध जाता हूं, और भगवान बंध गए। उखल के साथ बांध दिया गया, भगवान बैठे हैं देख रहे हैं, माता अपना कार्य कर रही है, दोबारा से दही बिलोया है, घर के बाकी काम निपटा रही है। भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा है, वो दो पेड़ खड़े हैं सामने, वो दो पेड़ मुझे उनको भी तो गिराना है, चलो मैं अपना अगला काम करता हूं। तो भगवान जो है घिसटते 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 उखल को अपने साथ लेते लेते हुए अल्टीमेटली वहां तक पहुंचते हैं और दोनों पेड़ों के बीच में से निकल जाते हैं और उखल फंस जाता। जब एक झटका देते हैं तो दोनों पेड़ गिर जाते हैं, उसमें से दो दिव्य पुरुष बाहर निकलते हैं। क्या नाम है उनका? नलकुवर और मणिग्रीव। कुबेर के पुत्र हैं, उनको श्राप मिला हुआ है नारद जी के द्वारा। ये जब नारद जी एक बार जा रहे थे तो उसके कुबेर के दोनों पुत्र जो है नदी के सरोवर के अंदर कुछ बालाओं के साथ, कुछ कन्याओं के साथ जो है कल्लोल कर रहे थे, पर जो है इनको देखने के बाद जो है उन्होंने वस्त्र नहीं ओढ़े, बिल्कुल नग्न ही खड़े रहे। तो नारद जी ने श्राप दिया कि पेड़ एक ऐसी जाति है जिसमें वस्त्र नहीं पहने जाते, तुम जाओ आज से पेड़ हो जाओ। जब पेड़ हो जाते हैं तो उनसे जब क्षमा मांगते हैं तो नारद जी कहते हैं ठीक है तुमको क्षमा मिलेगी, द्वापर के अंत के अंदर जो है भगवान कृष्ण जब प्रकट होंगे तब तुम उनके आंगन में पेड़ बन के खड़े रहोगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो दोनों के दोनों जो है वहां से चले जाते हैं और अल्टीमेटली जो है उनका उद्धार हो जाता। यही दामोदर लीला को जब राधा जी को पता लगता है, सारी कथा सुनती है यशोदा मैया से किस तरह से भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने समर्पण किया और कैसे जो है भगवान कृष्ण ने उनके प्रति समर्पण किया, तो राधा जी अभिभूत हो जाती हैं। उस वक्त जो है लीला होती है माया मृगम, मृगम मतलब हिरण, माया मतलब मिराज। जैसे कि रेगिस्तान में हिरण भागता है और भागता चला जाता है और आगे उसको पानी नहीं मिलता है, इस तरह राधा जी जो है कृष्ण को अपने पास नहीं आने देती। अल्टीमेटली जो है जब कृष्ण उसके प्रति सरेंडर कर देते हैं तो उनको फिर अपनी पाश से बांध देती। तो एक दिन जो है राधा जी ने कृष्ण को अपॉइंटमेंट दिया कि हम वहां मिलेंगे वन में, और कृष्ण नहीं आए, लेट पहुंचे। तो जब लौट के आए तो राधा जी ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। जब रस्सी से बांधा तो कृष्ण कहने लगे ठीक है बंध तो मैं गया हूं, परंतु मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, तो सुन लो मैं लेट क्यों आया, मेरी बात तो सुन लो, कृपया कुछ सुन तो लो मेरी बात। राधा जी कहते हैं सुनाओ लेट क्यों आए। बोले इसलिए कि माता यशोदा ने काम कह दिया था इसलिए मुझे लेट हो गया, मुझे उनका काम करना पड़ा, मैं तुमको मना नहीं कर सकता। राधा जी पिघल जाती हैं और उनको अपने पास से मुक्त कर देती हैं। वही राधा जी जब छोटे होते हैं दोनों राधा और कृष्ण, तो वन के अंदर जो है भांडीर वन के अंदर विहार कर रहे हैं वहां पर जो है इन तुम दोनों का साइज 16 साल का हो जाता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सारे देवता आते हैं, दोनों का विवाह कराते हैं। विवाह के अंदर जो है राधा जी की साड़ी का कृष्ण की धोती के साथ गठबंधन किया जाता है। कुछ लोग इसको भी वैष्णवाचार्य दामोदर लीला के नाम से पुकारते हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से लीलाएं करी गई। अब आता है इसके बाद प्रश्न दीपावली का। 5 दिन की दिवाली है और 5 दिन कौन कौन से हैं? धनतेरस में क्या होता? धन की वर्षा। उस दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। क्या बात है, धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदे जाते हैं, वाह। धन त्रयोदशी कहते हैं इसको शॉर्ट में। पूरा नाम है धनवंतरी त्रयोदशी। धनवंतरी त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत लेके और उसके बाद औषधियों का भंडार लेके। उन औषधियों को उन्होंने मानव जाति के प्रति समर्पित कर दिया, जिससे कि उन औषधियों का लाभ हम आज तक उठा रहे हैं। उसका बिगिनिंग जो है वो धनवंतरी त्रयोदशी को हुआ, दिवाली से 2 दिन पहले। नंबर 1। नंबर 2, धनवंतरी त्रयोदशी के दिन, क्योंकि दिवाली का पहला दिन गिना जाता है, इस दिन शास्त्रों के अनुसार सबको यमुना जी में स्नान करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, भगवान को दीप दान करने के बाद और भगवान को भोग लगाने के बाद, जो भोग के बाद प्रसाद जनरेट हो गया है, प्रसाद बन गया है, उस दीपक को और उस प्रसाद को आपको मानसिक रूप से यमराज जी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से यमराज जी आपको असमय मृत्यु से बचाओ अर्थात रक्षा का वरदान देते हैं। आप कामना नहीं करते बट ऑटोमेटिकली इट इज गिवन। इसलिए जो है धनतेरस में बर्तन खरीदने का तो हम लोगों ने सिस्टम बना दिया, लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है, बर्तन खरीदे जा रहे हैं, जाओ भाई एक बार चम्मच ले आओ जाके बर्तन है ना, चम्मच भी आज चम्मच जरूर खरीद के लाएंगे, एक कटोरी ले आओ, एक थाली ले आओ, कुछ तो ले आओ जाके, बर्तन घर में आना चाहिए। नहीं, उस दिन हमको नदी में, यमुना जी हर जगह नहीं है, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे वहां नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, तो मतलब आपको जो है यमुना जी का जल अगर पास हो, उसके कुछ बूंदे जो है जल में डाल के उसको फिर आप आवाहन करेंगे, यमुना जी प्रकट हो जाएंगी, तो उससे आपको जो है जल से स्नान करने के बाद, उसके बाद आपने भगवान को जो दीप दान दिया है, भगवान को जो भोग अर्पित किया है, उसको यमराज जी को देना है और यमराज जी जो है आपको असमय मृत्यु से रक्षा का वरदान देते हैं। दीपावली का दूसरा दिन, दूसरा दिन कहलाता है नरका चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी, नरक जाने वाली नहीं है ये नहीं कि इस दिन जो है कुछ पूजा करेंगे तो आप नरक जाएंगे। नरका चतुर्दशी का अर्थ यह है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 रानियों को, 16,000 प्रिंसेस राजकुमारियों को उसकी कैद से छुड़ाया था। ये 16,000 राजकुमारियां जो हैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमको आपने छुड़ा तो लिया है परंतु समाज में हमको स्वीकार कौन करेगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमको स्वीकार मैं करूंगा, आज से तुम मेरी रानियां कहलाओगी। और भगवान कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया और भगवान कृष्ण की 108 रानियां पहले थी, अब हो गई 16,108। अब आती है इसके बाद तीसरा दिन, जो एक्चुअल जिसको हम दिवाली कहते हैं कि दिवाली का दिन। उस दिन क्या हुआ था? भगवान राम जो है रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या नगरी में वापस आए थे। इस डे को आप जो है सेलिब्रेट करते हैं दीप दान के रूप में, दीपावली के रूप में, ये एक कारण है। दूसरा, बलि महाराज ने लक्ष्मी जो कैद कर लिया था, उस लक्ष्मी जी को वामन भगवान बन के ड्रॉफ जो बन छोटे भगवान छोटा रूप लेते हैं वामन देव का, उसका रूप धारण करके जब उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, उस दिन लक्ष्मी जी को वहां से छुड़वाया गया था। ये दीपावली का दिन था। नरका चतुर्दशी जो कि हो चुकी है, नरकासुर का वध हो चुका है, भगवान 16,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करके आ रहे हैं, इस उपलक्ष्य में जो है द्वारका के लोग दीपमाला करते हैं, दे सेलिब्रेट दिस, दीपमाला की जाती है। अब आती है इसके बाद चर्चा कि राजा पृथु महाराज तो भगवान का ही एक अवतार है, उन्होंने इस दिन पृथ्वी का दोहन किया और उसके बाद जो है जो यहां से जो है आपको धन धान्य की उपलब्धि हुई, उससे जो है सारे संसार सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रसन्नता का वातावरण बना। दीपावली जो है जो ग्रोइंग सीजन है, जो फसल का लास्ट डेज आते हैं, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो लोगों के पास धन आता है, उसके फिर बाद उसको उस दिवाली के रूप में उस दिन सेलिब्रेशन करते हैं, अपनी जो फसल होती है उसका भोग भगवान को लगाते हैं, प्रथम बार भगवान के प्रति फसल को समर्पित किया जाता। वनवास काटने के बाद, अज्ञातवास काटने के बाद पांडव जो है दीपावली के दिन ही अपने नगर में वापस आए थे। तो दीपावली का दिन जो है बहुत महत्व का दिन है। अब आती है उसके बाद चौथा दिन, दीपावली से नेक्स्ट डे क्या होता है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन जी के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, हम जो है चर्चा करेंगे सिर्फ यहां पर शॉर्ट में कि गोवर्धन जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इंद्र की पूजा मना करी गई, इंद्र ने समर्थक बादल भेजे, भगवान कृष्ण को अपनी कनिष्ठा उंगली के ऊपर जो है उठाना पड़ा, गोवर्धन को 7 दिन तक खड़े रहे, डंडों से सपोर्ट करी, सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए, ये सारी सारी कहानियां आपको, सारी लीला आपको मालूम। जब वसुंधरा अर्थात धरती जो है ब्रह्मा जी के साथ और देवताओं के साथ भगवान के पास पहुंचती है, उनसे कहती है कि अब यहां दुष्टों का संहार करने का समय आ गया है, मैं बहुत दुखी हूं, आपको प्रकट होना पड़ेगा, तो भगवान जो है कहते यस मैं आऊंगा, आई विल कम। अब भगवान जो है आना तो चाहते हैं परंतु कंपनी चाहते हैं, कंपनी के बिना तो नहीं आना चाहते। तो भगवान राधा जी से कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि मेरा प्रोग्राम धरती पे जाने का बन गया, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, तुम अपना कार्यक्रम बताओ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तो राधा जी कहती हैं कि मेरा प्रोग्राम तो वही है जो आपका है, परंतु स्त्री हूं ना तो शर्तें रखती हूं, बिना शर्तों के तो चलती नहीं कहीं में, मेरी 3 कंडीशन है, अगर आप मेरी 3 शर्तें पूरी कर दोगे तो मैं आपके साथ चलूंगी, वरना आप जाइए मैं यहीं ठीक हूं, मैं तो नहीं जाती। तो कृष्ण कहते हैं बताओ जो तुम्हारी शर्तें हैं मैं उन्हें पूर्ण करूंगा। कहती है मेरी पहली शर्त यह है कि जहां मैं रहूंगी वहां वृंदावन होना चाहिए, जहां मुझे ले जाना चाहते हो वहां वृंदावन होना चाहिए। ठीक मंजूर, जहां मैं जाऊंगी वहां यमुना नदी होनी चाहिए। बोले मंजूर, और जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता, तो गोवर्धन पर्वत भी होना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं कोई बात, तीनों शर्तें मुझे मंजूर हैं, तीनों चीजें वहां प्रकट होंगी, तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरे साथ चलो। अब गोवर्धन जी तो है नहीं, गोवर्धन जी की उत्पत्ति हुई है द्रोणाचल पर्वत के गर्भ से भारत के पश्चिम में शालमल द्वीप में। अब उस गोवर्धन जी को वहां से ब्रज में आना है तो आना कैसे है, उसका तरीका क्या है आने का। अब इसके लिए एक लीला की रचना होती है, एक सिस्टम बनाया जाता। द्रोणाचल से उनके जो बाकी पर्वत हैं वो आते हैं, हिमालय सुमेरु सारे पर्वत आके जो है उनको प्रणाम करते हैं, गोवर्धन जी का विधिवत पूजन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब सनत जी बता रहे हैं कथा, कहते हैं कि एक मुनि है वाराणसी में, नाम है पुलत्स्य, वाराणसी में विराजते हैं। वो भ्रमण करते हुए जब भारत के पश्चिम के अंदर शालमल द्वीप पे पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर जो है एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जो द्रोणाचल के पुत्र हैं और उनका रंग है श्याम वर्ण, नाम है गोवर्धन। वो देखते हैं कि वहां पर जो है फलों के बहुत सारे पेड़ हैं जो फलों से झुके हुए हैं, माधवी लताएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष हैं, निर्झर झरने जो है वहां बह रहे हैं, पर्वत में बड़ी शांति विराज रही है, रत्नमय मनोहर शैल है, सैकड़ों शिखर हैं। उनको लगा कि ऐसा पर्वत अगर मेरे यहां हो तो मैं तो इसके ऊपर बैठ के तपस्या करूं, आनंद आ जाए, मजा आ जाए। अब जो है जब पर्वत प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो द्रोणाचल के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि तुम पर्वतों के स्वामी हो, सब देवता तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारे यहां दिव्य औषधियां हैं और मनुष्यों को सदा जीवन देने वाले हो, मैं काशी का निवासी मुनि हूं, तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो है अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। अब मैं तुम्हारे पुत्र को काशी में स्थापित करूंगा जहां मोक्षदायिनी गंगा जी बहती है और उसके ऊपर बैठ के तपस्या करने की मेरी अभिलाषा है, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है, कृपया मेरी इच्छा को पूर्ण करो। अब द्रोणाचल फंस गए, भाव विहल हो गए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कहते हैं अगर दे दूं तो परेशान, ना दूं तो श्राप मिल जाए, पुत्र से जुदाई कैसे, पुत्र से बिछो कैसे, टेंशन आ गई। अब उस टेंशन के अंदर जो है सोचते हैं कि दे देना ही उचित है, श्राप झेलना जरा मुश्किल है, बिछो झेल लेंगे परंतु श्राप को सहना कठिन है, इसलिए गोवर्धन जी को दे दें। तो उनसे कहते हैं कि मैं अपने पुत्र को आपके श्राप से भयभीत होकर आपको अर्पित करता हूं, आप इसको जो है अपने यहां ले जाइए। तो गोवर्धन जी कहते हैं देखो भाई ऐसा है, जाऊंगा तो मैं जरूर, परंतु मेरा शरीर जो है 8 योजन लंबा है, 8 योजन मीन्स 40 मील, मेरा शरीर 2 योजन ऊंचा है 16 मील और 5 योजन चौड़ा है, तो मैं तो भैया नहीं जा सकता, सॉरी 8 योजन का मतलब है 64 मील, 64 मील 16 मील ऊंचा और 40 मील चौड़ा, मुझे कैसे ले जाओगे तुम, मैं सिद्धियां जानता हूं, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुमको अपनी हथेली पे विराजमान करके यहां से काशी ले जाऊंगा। अरे बाबा रे, इतने विशाल पर्वत को मुनि जो है अपनी हथेली पे विराजमान करके काशी ले जाने के लिए तैयार हैं। तो गोवर्धन जी कहते हैं ठीक है आप उचित कह रहे हो, परंतु मेरी भी एक शर्त है, एक प्रतिज्ञा मेरी भी है। बोले क्या? बोले आप थकोगे तो नहीं? बोले नहीं मैं थकता नहीं, मेरे में बहुत शक्ति है, मैं यहां से उठाऊंगा तुमको और सीधा काशी ले जाऊंगा। ठीक, पर अगर आप कहीं थक गए और आपने मुझे रख दिया तो फिर मैं उठूंगा नहीं, फिर मैं टिक जाऊंगा आराम से, फिर मेरे उठने का कोई चांस नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जब गोवर्धन जी चले आ रहे हैं, भारत भूमि आती है, ब्रज आता है, तो गोवर्धन जी को अपनी सारी पूर्व जन्म की लीलाएं स्मरण है। वो कहते हैं यहां तो कृष्ण आने वाले हैं, यहां तो राधा जी आने वाली है, या गोपियों का प्राकट्य होने वाला है, यहां तो उनको मेरे ऊपर लीलाएं करनी है, मैं यहां से आगे कैसे जा सकता हूं, मुझे तो यहीं रहना। अच्छा जी कैसे रहेंगे? तो अपना वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इतना वजन बढ़ाते हैं कि मुनि को थकावट हो जाती है, थकावट हो जाती है तो गोवर्धन जी को पृथ्वी पर विराजमान करते हैं और कहते हैं जरा मैं लघु शंका होके आता हूं। गए, उसके उसके बाद नहाए, पूजा अर्चना करी, वापस लौटे तो गोवर्धन जी से कहते हैं चलो अभी ऐसा है, अब मैं फ्री हो गया हूं, फुर्सत पा गया हूं, लघु शंका से निवृत्त हो गया हूं, अब तुम मेरे साथ चलो, हम अब काशी की ओर प्रस्थान करते हैं, मेरे हथेली पर विराजमान हो जाओ। तो गोवर्धन जी कहते हैं महामुनि आपको मेरी शर्त याद है ना, आपकी शर्त के अनुरूप मैं आपके साथ चल दिया था, और मेरी शर्त के अनुरूप आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कहीं रखेंगे नहीं, आपने मुझे रख दिया है, इसलिए मैं यहां से आगे नहीं जाने वाला। उलझ जी कहते हैं देखो अब ज्यादा रूठो मत, शीघ्र चलो, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा अभिप्राय क्या है, व्हाट डू यू वांट। तो गोवर्धन जी कहते हैं मेरा क्या दोष है, आपने मुझे यहां रखा, आपने प्रॉमिस किया था, आपने कमिट किया था मुझे रखोगे नहीं, मुझे सीधा वहां ले जाओगे, कसूर मेरा क्या, कसूर आपका है, आपका सूर, आप सहो, मैं क्यों सहूं, मैं तो यहीं रहूंगा। अच्छा जी, गुस्से में आगे श्राप दे दिया, बोले पर्वत तो बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया है, तुम प्रतिदिन तिल तिल भर के क्षीण होते चले जाओगे। वही वजह है कि 16 मील ऊंचा पर्वत आज हमें छोटा दिखाई दे रहा है, चौड़ा भी कम हो गया है और लंबाई भी कंपैरेटिवली कम हो गई है, क्षीण होता जा रहा है पुलत्स्य मुनि के श्राप के कारण। अब आता है इसके बाद दीपावली का 5वां दिन, जिसको आप भाई दूज के नाम से पुकारते हैं। भाई दूज में क्या है जी, भाई के यहां जाओ, तिलक लगाओ और दक्षिणा ले आओ। शास्त्र कहता है कि भ्रातृदूज जो है, जिसको गोवर्धन पूजा के एक दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली के 2 दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन का महत्व क्या है। यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर में इस दिन विजिट किए थे, और विजिट करने के बाद यमुना जी ने जो है भगवान कृष्ण को लगा हुआ भोग प्रसाद के रूप में उनको अर्पित किया और अपने सामने बिठा के उनको खिलाया। तो यमराज जी ने यमुना जी को कहा, एक वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहां जाके बड़े मान सम्मान पूर्वक वहां पर उनसे मिलेगा, आशीर्वाद देगा और भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोग बहन के हाथों से स्वीकार करेगा, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। दीज आर द रियल सिग्निफिकेंस। हम लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, चलो अभी जाओ टीका लगाओ और कुछ दान दक्षिणा ले आओ। अब आती है इसके बाद, लास्ट में 2 मिनट और हैं, कि भीष्म पंचक क्या है। तो जो आखिरी 5 दिन हैं, मतलब एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कभी कभी एकादशी द्वादशी को आती है तो 4 दिन रह जाएंगे, होता है ऐसे, कभी कभी होता है। भीष्म पितामह बानों की शैया पे लेटे हुए हैं, पांडवों को बहुत सारा ज्ञान दिलवाया है कृष्ण ने अपने योग बल से, उनके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करके, राज धर्म है, मोक्ष धर्म है, दान धर्म है, गृह धर्म है, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, बहुत सारे धर्मों की व्याख्या हुई है। तो भीष्म जी बोलते बोलते थक गए, उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है कि मुझे जल चाहिए, मैं प्यासा हूं। कृष्ण भी वहां खड़े हैं, सुन रहे हैं, उनसे बड़े प्रसन्न हैं। कृष्ण ये ज्ञान खुद दे सकते थे, पर भगवान अपनी कीर्ति से ज्यादा अपने भक्तों की कीर्ति चाहते हैं। उसका प्रूफ है भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में, जहां भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये बात भगवान स्वयं क्यों नहीं कह सकते थे, जब गीता का उपदेश दे रहे हैं तो सूद भी कह सकते थे, नहीं, अर्जुन के मुख से कहलवाई कि भक्त की कीर्ति रहे, और भक्त का दिया वचन मैं कभी नहीं तोड़ता, अपना वचन तोड़ भी सकता हूं। अब जो है अर्जुन ने बाण मारा सिरहाने की ओर, जल की धारा निकली, सीधा भीष्म जी के मुख में गई, प्यास बुझी। तो भगवान कृष्ण जो है उनसे कहते हैं, हे भीष्म, तुमने एकादशी के दिन जल के लिए याचना करी है और अर्जुन ने बाण को लगा के जल को निकाला है, जिससे तुम्हारे तन मन और प्राण संतुष्ट हो गए। तो आज से पूर्णिमा तक जो व्यक्ति मुझे अर्पण किए हुए जल के बाद उस जल से तुम्हें अर्घ्य दान देगा और तुमको संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, वो बेसिकली मुझे संतुष्ट कर रहा है। इस भीष्म पंचक व्रत के प्रतिवर्ष पालन करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जो 5 दिन है, इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, 5 दिन जो है सिर्फ जल का ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं लेते। कुछ लोग इस 5 दिन के अंदर जो है जल के साथ फल लेते हैं, कुछ लोग दूध फल और जल लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ एकाशी प्रसाद फल और दूध और जल लेते हैं। अपने अपने तरीके से लोग जो है 5 दिनों के अंदर तपस्या करते हैं। शास्त्र के अनुसार जो पहला दिन है भीष्म पंचक का, जो एकादशी का दिन होता है, उस दिन आपको जो है कमल के फूल जो है भगवान के चरणों में अर्पित करने चाहिए। जो दूसरा दिन है, जो एकादशी के बाद द्वादशी आती है, उस दिन आपको जो है बिल्व पत्र जो शिवजी को भी चढ़ाए जाते हैं, भाई बिल्व पत्र की बात हो रही है, उसको वुड एप्पल भी कहते हैं, उसको भगवान की जंघाओं में चढ़ाना होता है। तीसरे दिन आपको इत्र गंध जिसे कहते हैं, गंध जो है भगवान की नाभि में लगानी होती है। घर में अगर ठाकुर जी हैं उनकी नाभि में आपको गंध का अर्पण करना है। और चौथे दिन जब के फूल जो होते हैं उसको भगवान के कंधों पे डाला जाता है, भगवान कृष्ण के कंधों पे अर्पित किए जाते हैं। और पांचवें दिन जो है मालती के फूल जो है उनको भगवान के सर पे अर्पित किया जाता है। इस तरह जो है 5 दिन दीपावली के और 5 दिन विष्णु पंचक के सेलिब्रेट किए जाते हैं। कथाएं बहुत लंबी हैं, अनंत हैं, शॉर्ट में उनको नहीं डिस्कस किया जा सकता। कोशिश करी है कि आपको ये 40 मिनट के अंदर कुछ बता दिया जाए, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर देखी जाएगी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आंसर इसमें वो हो गए नहीं, करना को कर ले संबड़ी के नाश।
हरे कृष्णा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ग्रेस प्रभु श्री कृष्ण हरि प्रभु का, उन्होंने इतने सुंदर तरीके से सारी कथाओं के बारे में बताया और दीपावली का गुणगान किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कुछ अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट मंडे से यहाँ पर इस ग्रेस दीननायक प्रभु का 7 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 7 दिन का, शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक कथा होगी यहाँ पे। तो आप सब लोग कृपा करके आए, छुट्टी नहीं है, और भी सुंदर तरीके से आपको कथा सुनने को मिलेगी, कंटिन्यू 7 डेज नेक्टर मिलेगा। तो कृपा करके आइए रेगुलर बेस पे। और इसके बाद जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी कार्तिक यात्रा जा रही है, कुछ डेट चेंज हुआ है। पहले हमने डिसाइड किया था कि 15-16 में जाएंगे, आप 22 और 23 तारीख को जा रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख को कुछ फेस्टिवल है, करवा चौथ है उस दिन, तो शायद माताएं नहीं जा पाएंगी इतनी ज्यादा यहां से, तो इसलिए हमने डेट जो है चेंज करी है 22 और 23 तारीख को। पर उसका रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग्स है, क्योंकि वहां पर जो है एकोमोडेशन नहीं मिलता है बहुत जल्दी बरसाने में,
क्लास है।
तो वो थर्ड को आप लास्ट करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, थर्ड को आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लास्ट डेट है 3 अक्टूबर तक, आप लोग अपना कृपा करके रजिस्ट्रेशन करा लें, तो उसके बाद जो है हम एकोमोडेशन बुक करा सकते हैं, अन्यथा कार्तिक में बहुत रश होता है और वहां पर एकोमोडेशन नहीं मिलता है जल्दी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 डे सेशन का जो कोर्स है वो कल से आरंभ हो रहा है, और हम पहले सोच रहे थे कि हम लाइब्रेरी में करेंगे, इसलिए जो है हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे, परंतु अभी हमने डिसाइड किया है कि हम रोबोटिक हॉल में करेंगे, हमें वो खाली मिल गया है। तो जो लोग जिन लोगों को और भी रजिस्ट्रेशन जो कराना चाहते हैं वो अभी भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक ओपन है ये। तो आप लोग कृपा करके इसको जरूर अटेंड करें, आपका बेसिक कंसेप्ट जितना भी स्पिरिचुअल लाइफ का है इसके थ्रू क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि हम पिछली बार भी बता रहे थे कि हमने जो है कुछ सीडीज बनाई है जो मंडे क्लास में लेक्चर होते हैं उनके, तो वो सीडी आज भी अवेलेबल है बाहर, जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। और प्रसादम आप लोग पा सकते हैं प्रसादम हॉल में। हरे कृष्णा।